हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये लड़का तो तकरीबन एक घंटे से खड़ा है। उनकी बात पर उसकी चाची ने कहा, क्या? गीत कहने लगी, हाँ, मालूम नहीं किसी को ढूंढ रहा है, उनका घर नहीं मिल रहा। गीत ने अपने सिर पर हाथ मारा, मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, जरूर मुझे कॉल कर रहा होगा घर ढूंढने के लिए। गीत गेट की तरफ जाने लगी। परेशानी में वंश जो इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो कितनी देर से गीत को फोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर गीत फोन ही नहीं उठा रही थी। जब उसने सामने से भागकर आती हुई गीत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई। थैंक गॉड, तुम मुझे मिल गई। वंश ने गीत को अपने गले से लगा लिया। मुझे तो लगा था मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा। वो उसे गले लगाए ही बात कर रहा था। आपकी सालियां भी यहीं पर हैं, अपनी बीवी के बाद हमें भी मिल लीजिए। पम्मी और नवदीप जो उसके पीछे ही आ गई थी, उसने कहा। वंश को ध्यान आया कि उसने गीत को गले लगाया हुआ है। गीत को मिलने की खुशी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो गीत को गले लगा चुका था। तभी तक चाची जी भी वहां आ चुकी थी और उनके पीछे ही दो तीन लड़के भी वहां आ गए थे। उनमें से एक ने पगड़ी बांधी हुई थी, दो बिना पगड़ी के थे। गीत, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना कि काका जी आने वाले हैं, वरना हम इन्हें ऐसे इंतजार नहीं करवाते। वो सभी वंश से बारी बारी मिलते हैं। जब वंश को पता चला कि गीत चली गई है, पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। पूरी रात वो करवटें बदलते रहा और सुबह उठते ही उसने पंजाब जा गीत के पास आने का फैसला किया। वंश वहां से फ्लाइट लेकर मोहाली पहुंचा और एयरपोर्ट के बाहर उसके चंडीगढ़ ऑफिस से उसकी गाड़ी उसका वेट कर रही थी। वंश ने ड्राइवर को वहीं से वापस कर दिया और खुद ही गांव के नाम की लोकेशन लगाकर गीत के गांव पहुंच गया, जहां जाकर उसने गीत के पापा का नाम बताकर घर पूछा और साथ ही शादी के बारे में बताया। किसी के घर में शादी हो रही है और गीत के पापा का नाम सुनकर बताने वाले ने उसे इस घर के आगे लाकर खड़ा कर दिया था। ये घर, जिसके बड़े से गेट के सामने वंश खड़ा था, गांव में से सबसे बड़ा घर मालूम हो रहा था। बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, जो पूरी सजाई गई थी। उस घर से बाहर से ही उन घर वालों की अमीरी झलक रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके जितना वंश गीत के बारे में जानता था, उसके हिसाब से तो गीत एक गरीब घर की लड़की थी, तो उसके रिश्तेदार इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? घर में लेडीज संगीत का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। घर के सामने ही जो खाली जगह थी, वहाँ पार्किंग का इंतजाम था। वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाकर रुक रही थी। वो पार्किंग में खड़ी हुई इतनी सारी गाड़ियाँ और जो लोग थे, उन्हें देखकर उसे लगा नहीं था ये गीत यहीं होगी। वो कन्फ्यूजन में गीत को फ़ोन लगाता है, मगर गीत का फ़ोन उसके पास हो तो वो तभी उठाए। उन लड़कों के साथ ही अंदर वंश ने आगे जाकर देखा, वहाँ बहुत बड़े लॉन में लेडीज संगीत का इंतजाम था, लॉन नाचने का इंतजाम था और साइड पर बहुत सारी स्टॉल्स, खाने पीने की स्टॉल्स, ड्रिंकिंग की स्टॉल्स, बहुत ज़्यादा बढ़िया इंतजाम था। उन सब चीज़ों से वंश को काफ़ी हैरानी हो रही थी। तभी दो आदमी, जिनकी उम्र 60 साल के आसपास थी, उनके पगड़ियाँ बंधी हुई थीं, वो लोग उनके पास आते हैं। गीत उन्हें अपने ताया और चाचा जी कहकर मिलवाती है। एक बुजुर्ग आदमी जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके भी पगड़ी बांधी थी और चेहरे पर बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी। गीत वंश को उनके पास लेकर जाती है। ये मेरे बड़े दादाजी हैं, मेरे दादाजी के भाई। वंश उनके पैर छूने के लिए झुकता है। वो आदमी खड़े होकर वंश को गले से लगा लेता है। बहुत खुशी हुई कि आप जहाँ आए। तभी वही तीन चार लड़के जो वंश से पहले मिले थे, वहाँ पर आए। चलिए जीजा जी, वो अपने साथ लेकर जाने लगे। वंश ने गीत की तरफ देखा। अब हम लोग हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सभी को डराती रहती है। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम रवनीत था, उसने कहा, मैं डराती हूँ तुमको? कब डराया धमकाया है मैंने तुम्हें? गीत ने उसकी तरफ आंखें निकाली। मैं तुमसे ज्यादा छोटा नहीं हूँ, सिर्फ थोड़े महीना का ही फर्क है। मुझ पर तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलने वाली, रवनीत उससे बोला। तो ठीक है, बताती हूँ मैं साचा जी को तुम्हारे कारनामे। मुझे सब पता है तुम चंडीगढ़ पढ़ने जाते हो, पढ़ते हो जा क्या करते हो, मुझसे तुम्हारी एक भी बात नहीं छुपी है। गीत ने उससे कहा, देखो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। जीजा जी, आप देख रहे हैं ना, हर बात पर मुझे ब्लैकमेल करती है, रवनीत ने वंश से कहा। उसे लगा वंश उसकी हेल्प करेगा। अब तुम दोनों लड़ाई करने मत लगा जाना। अब गीत, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, बड़ी हो जाओ तुम। और रवनीत, तुम अब तुम्हारी भी शादी होगी, गुरदीप की शादी के बाद। अकल तो तुम दोनों में बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ा लड़का, जिसका नाम परविंदर था, उसने दोनों से कहा। वंश उन लड़ते हुए भाई बहनों को देख रहा था। गीत का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। गीत उन सभी लड़कों पर दादागिरी कर रही थी और वो उससे डरते भी थे। तुम जाकर लड़कियों के साथ डांस करो, रवनीत ने फिर उससे कहा। तभी पम्मी और नवदीप गीत को बुलाने के लिए आ गई। चलो हम लोग नाचते हैं। वंश उन लड़कों के साथ वहाँ राउंड टेबल लगे हुए थे वहाँ जाकर बैठ गया और गीत लड़कियों के साथ डांस करने लगी। जहाँ ड्रिंक सर्व हो रहे थे, वंश पहले मना करने लगा, फिर उसने एक ड्रिंक ले लिया। वो लड़के उसके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। आप मेरा नाम ले सकते हैं, वंश ने उनसे कहा। सभी मुझे वंश कहते हैं, मैं तो आपसे छोटा हूँ, मैं तो आपके जीजाजी ही कहूँगा, नवदीप कहने लगा। और वैसे भी अगर मैंने आपका नाम लिया, हो सकता है कि उस चुड़ैल से मुझे मार पड़ जाए, नवदीप ने गीत की तरफ देखकर कहा। क्या वो इतनी खतरनाक है, वंश ने हंसकर कहा। इस दुनिया में उससे खतरनाक कोई नहीं, उसे हर बात की खबर होती है, मेरा कोई सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहता। जब हम लोग साथ में ग्रेजुएशन करते थे यूनिवर्सिटी में, तब तो पूछिए मत, जी खुद तो टॉपर थी, मैं पास भी मुश्किल से होता था। मैं उससे इतना डर कर रहता था, मेरे दोस्त भी उससे डरते थे। फिर ग्रेजुएशन के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, मगर मेरी खबर फिर भी उसे रहती थी। तुम कहाँ अपनी स्टोरी लेकर बैठ गए? एक लड़का जिसके पगड़ी नहीं बांधी थी, उसका नाम परमिंदर था। वंश वहाँ सभी लड़कों से मिलने लगा। सभी वंश को देखकर उठकर उससे मिलने लगे। गीत की कजिन सिस्टर के हस्बैंड, वो भी सभी लोग वहाँ आ गए थे। गीत, जो अब तक उदास थी, एकदम खुश हो गई थी। उसका चेहरा चमकने लगा था। वो नवदीप और पम्मी के साथ स्टेज पर नाचने चली गई। वंश सभी से बातें करता हुआ गीत की तरफ देख रहा था। उसने रेड सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ, खुले बाल, मांग में टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियां। वंश की नजरें उस पर ठहर रही थी। बहुत कम बार हुआ था कि वो ऐसे तैयार हुई थी। फिर वंश का ध्यान गीत के पैरों की तरफ गया। उसने वही पायल पहनी हुई थी जो उसने गिफ्ट की थी।